कल तो मम्मा का दिन है, चलो बहती हुई गंगा सरस्वती का नाम कोई काम कर रही थी मम्मा। एक धारणा की मूर्ति और एक शिव शक्ति की अवतार, मैं जब अपने लाइफ में देखती हूँ कि मैंने मम्मा की पर्सनालिटी से क्या प्रेरणा ली है, भल इस लाइफ में तो मम्मा को उस आंखों से नहीं देखा है, लेकिन जो भी खास करके दादी जानकी की कहानियां थी मम्मा के प्रति, तो बुद्धि द्वारा तो महसूस किया कि इतनी ऊंच हस्ती थी, इतनी एक महान पर्सनैलिटी जिसकी कशिश कुछ और थी। दादी जानकी हमको बार बार बताती थी कि वो सभी एक स्कूल में ही पढ़ते थे, मम्मा, बड़ी दादी, चंद्रमणि दादी, वो एक क्लास के मेट्स थे। दादी की उम्र थोड़ी और बड़ी थी, लेकिन दादी ने 2 साल 3 साल के बाद स्कूल छोड़ दिया था। और दादी जब यज्ञ में आए थे तो 1-1.5 साल लेट आई थी दादी, वो बात ऑलवेज याद करती है। इसलिए खास करके पढ़ाई पे ध्यान करके दादी ने बहुत अपने आप को आगे बढ़ाया है। लेकिन जब वो आए थे तो मुझे याद है दादी ने बताया थे कि ऑलराउंडर दादी मिले थे, और ऑलराउंडर दादी ने उसको बताया क्या मम्मा को मिली हूँ। तो दादी जानकी ने सोचा अच्छा शायद ब्रजेंद्र दादी की बात करती होंगी या जशोदा माँ की बात करती। तो दोबारा पूछा मम्मा को मिली हो, तो फिर लेके गए मम्मा के पास। तो उसने देखा ये तो स्कूल वाली थी, कितना परिवर्तन आ गया है उसमें, क्योंकि जब स्कूल में थी तो अच्छे अच्छे फ्रॉक्स पहनती थी, वो फ्रॉक पजामा जो सिंधी लोग पहनते थे, इंग्लिश में ज्यादातर बात करती थी। तो दादी ने जब इसका परिवर्तन देखा और बताया कि इसकी पर्सनैलिटी इतनी न्यारी थी, इतनी कशिश वाली थी, कि तुरंत वो मेरे अंदर भावना पैदा हुई, श्रद्धा भावना पैदा हुई कि एक माँ है। और मुझे ये भी याद है कि दादी ने बताई थी बात कि देखो बाबा ने हमको देह के संबंध से कैसे न्यारा बनना है वो सिखाया था, ठीक है, उपराम अवस्था। लेकिन यहाँ पे कैसा बनना है, धारणाएं कैसी होनी चाहिए, वो मम्मा ने बताया। और जहां तक मैं दादी की जीवन को ऑब्जर्व किया है, दादी की 2 बड़ी विशेषता थी जो उन्होंने मम्मा से खास प्रेरणा ली थी। एक थी दादी की मंथन शक्ति। दादी के क्लासेस इतने जबरदस्त होते थे, लेकिन दादी ने ये प्रेरणा मम्मा से ली थी, क्योंकि मम्मा की क्लासेस में इतनी स्पष्टीकरण, तो दादी में ये भावना रहती थी कि मैं उसकी कॉपी करूं। तो एक बार याद है कि दादी शायद उस दिनों में जब कराची में थे तो दादी का बाबा का बंगलो अलग था, तो दादी वहां जाए और बाबा की मुरली सुन करके वापस कुंज भवन में आई थी। तो मम्मा ने दादी को बोला अच्छा तुम मुरली सुन के आई हो ना, अभी बैठ करके क्लास करा बाबा के शब्द। तो तब से लेकर के वो दादी के अंदर जो भावनाएं थी कि मैं इतना मेरा मंथन इतना गहरा होना चाहिए, वो मम्मा से प्रेरणा आई थी। मुझे याद है एक बार बताया था हमको कि दीदी ने बाबा को पूछा था कि बाबा मम्मा कैसे नंबर वन थे। आपको पता था कि दीदी बाबा के साथ पर्सनल असिस्टेंट के रूप में थे, जिसको भी बाबा मिलते थे दीदी बाजू में बैठती थी, नोट्स भी लेती थी। तो फिर जवाब दिया बाबा ने कि देखो, जब बाबा श्रीमंत किसी को देता है तो आप समझते हो कि वो उस व्यक्ति के लिए श्रीमंत है, लेकिन जब मम्मा श्रीमंत सुनती है तो वो अपने लिए ले लेती है, इसीलिए मम्मा नंबर वन थी। इतनी अच्छी बात कि उसमें इसकी बुद्धि इतनी ओपन अवेलेबल, जो भी बाबा के मुख से शब्द उच्चारित होते थे मम्मा तुरंत अपने लिए ले लेती थी। ऐसे नहीं सोचती थी जैसे बाबा ने इसको डायरेक्शन दिया है, इसको डायरेक्शन है, नहीं, उनके कहां तक पहुंचता माना ये मेरे लिए। आपकी दुनिया में कोई चीज आपके सामने आपके ध्यान में आती, प्राप्त करनी है, नंबर वन जाना है, तो सीखने की भावना बढ़ानी है। ये दादियों में बहुत हमने ऑब्जर्व किया है, वो बस टीचर बन करके नहीं रहे, सिखाने की भावना नहीं रही है, लेकिन बहुत जबरदस्त सीखने की भावना रही है। तो ये भी एक गंभीरता का फाउंडेशन बनता है उसका। इतनी सारी कहानियां बातें याद आ रही थी मेरे मन में, जैसे कहानियों की बहती हुई गंगा हो रही थी, तो मैंने दो चार ऐसी बातें लिखी थी। एक बारी दादी ने मम्मा को पूछा था, बाबा सॉरी मम्मा, आपका मन ऐसा कैसा है, क्योंकि मम्मा के स्वभाव में शीतलता बहुत महसूस करते थे। तो मम्मा ने ये जवाब दिया कि मैं अपने माइंड को शांति से चलाती हूं, इसलिए बड़ा अच्छा चलता है। तब से लेकर दादी ने ये बात बहुत अंडरलाइन की थी, क्योंकि हमको कई बार ध्यान खींचवाते थे कि कर्म करते हुए भी आपकी शांति की शक्ति जमा होनी चाहिए। ये भी हम बहुत बारी सुनते थे और महसूस भी करते थे। दादी हमका ध्यान खींचवाती थी कि देखो, आप लोग इतनी मेहनत करते हो शक्ति जमा करने के लिए। ये मम्मा का भी बहुत ध्यान था इसमें, आपका स्टॉक, जमा का स्टॉक, कमाई कितनी हो रही है, उन्नति कितनी हो रही है, अपने आप को कैसे आगे बढ़ा, इसका बहुत ध्यान था। तो हमको बार बार ये ध्यान खींचवाते थे कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो शक्ति जमा करने के लिए और फालतू बातें में खर्च कर देते हो, और फिर फालतू का खर्च पे खर्च होता है और उसमें निराशा पैदा होती है, कमजोरी आती है, फिर आपके सामने कुछ ऐसी बातें, ऐसी कोई परिस्थिति आई तो मुश्किल लग करके बैठ जाते, बहुत बड़ी बात है मेरे मुश्किल, क्योंकि कमजोरी महसूस होती है। तो मैंने ये बात देखा कि हमारा ध्यान दादियों ने बहुत ही इस बात पे अंडरलाइन किया कि आपको कैसी भी हालत में अपना स्टॉक का अकाउंट रखना है। मेरी शक्ति, मेरी कमाई हो रही, कमाई हमारी याद से होती है ना, जितनी हम याद दिल से याद करते उतनी हमारी कमाई होती है। एक को याद करो, दादी कहती थी ना, एक को याद करो, फिर उसके बाद जितना बिंदी बिंदी लगाते हो उतनी कमाई बढ़ती थी, 10, 100, 1000, 1,00,000, 1,00,000, फिर कितना हो जाता है। तो याद में, एक्यूरेट याद में कितनी कमाई है। और ये भी है कि
जहां तक हमने सुना है और देखा भी है और हमने दादी जी की धारणा, दादियों की धारणा में भी देखा है कि खास मम्मा की ये विशेषता थी कि टाइम का बहुत कदर था और इसमें नो एक्स्ट्रा शब्द, किसी के भी प्रति, कोई सिचुएशन के प्रति कोई भी एक्स्ट्रा शब्द उच्चारने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं हमारे संबंध में, आपस में, बस ऐसे गपशप में बात, बस ये हुआ वे हुआ, ये देखो बारिश कितनी आई वो कितना नहीं, वो कहते हैं ना लंदन में ऐसे बोलते हैं आपस में, जब हाय हेलो करते हैं ना तो पहले पहली बात वेदर का ही बोलते हैं, बस कितना अच्छा मौसम है, कितना बुरा, बस कुछ और बात मन में आता ही नहीं है। तो ये जो हम, चलो लोक लाज के हिसाब से हम अपने आप को चलाते हैं कि करना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है ना, ये आपके ऊपर है, ये आपने ही खुद अपने आप मन में और आपकी धारणाओं ने बंधन में डाल दिया। श्रीमत एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति भी है, मत भी है, जो शक्ति दिलाने वाली मत है। और आप देखेंगे एक बारी भी श्रीमत पे चले, माना अपने को आत्मा समझ उस ध्यान में चले जाए, तो आपको अपनी आत्मिक शक्ति महसूस होगी उस समय, और उसी समय बंधन मुक्त अवस्था महसूस होगी। और फिर वो जो अंदर मन का खिंचाव होता है ना, जो बार बार कुछ बात सताती है, वो बंद हो जाता है। तो आपे ही आत्म अभिमानी स्थिति से हम अपने आप को बंधन मुक्त बना सकते हैं। ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, बाबा के सामने बैठो, चलो किसी ने कुछ बोला, कुछ हुआ, कुछ कारोबार की बातें चली, लेकिन जब बाबा के पास आते हैं तो क्या बस बाबा के सामने हम अपने दिमाग एंगेज करके बैठेंगे क्या? ये रिगार्ड नहीं है बाबा के लिए। ये भी बहुत बारी दादी ने अंडरलाइन किया था कि मम्मा का बाबा के लिए बहुत रिगार्ड था। जब भी बाबा यहाँ मम्मा क्लास चलाते थे हिस्ट्री हॉल में, तो बाबा आकर के यहाँ दरवाजे के तरफ खड़े हो जाते थे, तो शुरू में पता नहीं चलता, जैसे मम्मा को पता चला चुप हो जाती थी। बाबा यहाँ बैठ करके मुरली चलाते थे, मम्मा ऐसे करके, बिल्कुल जैसे एक एक शब्द के ध्यान में चली जाती थी। बहुत ही रिगार्ड था मम्मा को बाबा के लिए। मुझे याद है कहानी जहां पे बाबा अचानक, एक कराची की बात है जो दादी ने बताई थी हमको, कि बाबा अचानक, क्योंकि वो अलग अलग भवन में रहते थे ना, तो बाबा अचानक कुंज भवन में आ गया था जहां पे मम्मा थी। और बाबा जैसे आया तो तुरंत वो छत पे चले गए, तो मम्मा थोड़ा दो तीन कदम पीछे लेट आई, तो लेट आए तो अपने आप को सीढ़ी पे बिठा दिया, जैसे अपने आप को सजा दे दिया कि मैं बाबा के बाद क्यों आई, मुझे पहले आना था, बाबा को वेलकम करना था, मेरी बुद्धि टच क्यों नहीं। तभी उस समय जैसे दादी को लगा कि देखो मम्मा की मैनर्स, कैसे बाबा के साथ व्यवहार करना, वो मैनर्स मम्मा ने प्रैक्टिकल रूप में दिखाया था। तो बाबा ने तो फिर प्यार से मम्मा को तो बुला लिया था, लेकिन ये छोटी बात है, लेकिन अपने लिए मैनर्स, रिगार्ड रखना, ये एक स्वमान की निशानी होती है। नहीं, कभी कभी लोग बोलते हैं कि इसका व्यवहार देखो ना ऐसा है, इसको कैसे रिस्पेक्ट दिया जाए, होता है ना कभी, इसको कैसे हम रिस्पेक्ट दे सकते। अरे आप थोड़ा सोचो कि ये जो संकल्प आपके मन में आ रहे हैं, इसका व्यवहार देखो मैं, ये आपकी स्वमान की कमी के कारण ये संकल्प आ रहा है, और वो संकल्प आपको धोखा दे रहा है, और फिर उस आधार से आप किसी को रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाएंगे। तो ये इतनी बड़ी बात थी कि जो भी किसी की गलती थी, मम्मा कभी किसी की गलती के में शब्द में नहीं आती थी, सुनाती नहीं थी, मर्ज करके शिक्षा देके फिनिश बात। मुझे याद है हम दादी जानकी को वॉकिंग लेके गए थे एक बारी वहां ऑक्सफोर्ड में, तो दादी की बहुत ही एक अच्छी सुंदर माना एक नियम था कि मुरली के बाद 20 मिनट 30 मिनट पैदल करना है, शांति में ज्यादातर से और बीच में थोड़ा सा मंथन हो तो अच्छा। तो हम जब वापसी आए तो हम सीढ़ी चढ़ रहे थे अंदर, तो दादी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे लंबी दृष्टि दिया और बोला कि किसी का भी स्वभाव या संस्कार मन या चित्त में नहीं रखना है। ये मम्मा ने बहुत अंडरलाइन किया था हमारे लिए, और मैंने देखा कि सचमुच दादी ने जब भारत छोड़ा तो बाबा ने दादी को होमवर्क दिया था। कौन सा होमवर्क दिया था? छोटा मधुबन का मॉडल वहां बनाओ। अभी आप देखो विश्व में कितनी वैरायटी कल्चर है, भाषा है, रंग है, वैरायटी स्वभाव वाले हैं, और विदेशी लोग तो ज्यादातर जो सीधी सादी सीधी बात है वो ही बताते हैं, मुंह में बताते हैं। तो आप सोचो कई ऐसी बातें दादी के सामने आई थी, लेकिन दादी ने कभी अपने मन या चित्त में किसी की बात रखी नहीं थी, क्योंकि आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी किसी की गलती या कुछ भी वो रह जाती है ना चित्त में, तो हमारी न्यारापन प्यारापन में कमी आ जाती है नहीं, क्योंकि गलती से हमारी गलती फिर पैदा होती है, हमारे अंदर रिएक्शन पैदा होता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो ये अंदर अपने आप को ये ऑटोमेटिक स्विच नहीं होता है, ये बहुत समझ का काम होता है। आप देखो ज्ञानी बनना बहुत इजी है, पॉइंट्स बुद्धि में रखना बहुत इजी है, लेकिन ज्ञान से अपने आप को समझाना और समझदार बन करके चलना ये बड़ी बात है। अपनी बुद्धि को पवित्र रखना, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी बुद्धि का संभाल करना है, पवित्र रखना है, एकाग्र रखना है, ये पुरुषार्थ मम्मा ने की थी। ये गुप्त पुरुषार्थ है, ऐसे नहीं बट तोते माफिक जो ज्ञान मिला वो। इसीलिए मम्मा के रूप में एक सत्यता की स्पष्टता दिखाई देती थी। श्रीमत क्लियर थी क्योंकि उसमें अपने विचार या अपनी मान्यताओं की मिलावट नहीं थी उसमें, तो जो रियलिटी है वो जैसी है बात वैसे बताती थी। जब कुछ मिलावट होता है ना उसकी निशानी ये होती है रिएक्शन, मिलावट की ये निशानी होती है हम कहानी बना देंगे कुछ चीज का, ऐसे हुआ वैसे हुआ इसने ये बोला, ये सारा कुछ दाल में काला है इसकी ये निशानी होती है। माना मैंने खुद अपने बुद्धि की पवित्रता का संभाल नहीं किया है, मैंने खुद श्रीमत में अपने विचार का मिलावट किया है या अपनी मान्यताओं का मिलावट किया है, इसीलिए मेरा रिएक्शन हो रहा है ना। नहीं, ये एक सूक्ष्म बात है। देखो एक दूसरी खूबी जो धारणा की बात है ये कि जो भी बाबा कहता था मम्मा हां जी का पाठ, ये भी दादी ने बहुत प्रेरणा ली है मम्मा से, जो भी बाबा कहता था हां जी, और तुरंत एक याद है मुझे कहानी जो दादी बताती थी, एक बार यहां मधुबन में बाबा एक ग्रुप को मिल रहे थे तो अचानक लास्ट में, और वो ग्रुप बस में चढ़ने वाला था ट्रेन में जाने के लिए, आप शायद आपने कहानी सुनी होंगी, तो मम्मा ने बाबा ने बोला था मम्मा हलवा बनाओ, लास्ट में हलवा बना करके ट्रेन पे चढ़ते समय उनको हलवा पहुंच दिया था। अभी देखो कोई और व्यक्ति होता अपने विचार का मिलावट करता, ये कैसे हो सकता है, अरे बाबा ये कैसे हो सकता है, अभी जाने वाले हैं, टाइम नहीं है, वो नहीं है, वो व्यर्थ विचार करते करते वो उस पुण्य काम में ही समय निकल जाता है, और फिर वो उसका नतीजा होता है कि उसका सारा काम डिले हो जाता है। फिर वो लास्ट में देखो काम नहीं हुआ ना, मैं राइट था ना, लेकिन उसको ये भान नहीं होता है कि मेरे फालतू विचार के कारण डिले हुआ। तो ये मैंने बहुत देखा था, क्योंकि दादी हमको काफी स्ट्रिक्ट थी हमारे साथ, हमारा थोड़ा सा भी ऐसे शिकल बदलता था ना, दादी हमको तुरंत आंख दिखाती थी। एक बारी मुझे याद है कहानी दादी ने बताई थी कि दादी जी पुणे में थे और वो वहां पे एक नया सेंटर खुला था, ठीक है, तो बाबा मधुबन में थे और वो चाहते थे कि मम्मा को सेवा पे भेजे, बाबा की बहुत भावना थी कि मम्मा को सेवा पे भेजे, तो बाबा का विचार था कि मम्मा को दिल्ली भेजे। तो पुणे में नया नया सेंटर खुला था, तो फिर बाबा ने अचानक दादी जानकी को बुलाया मधुबन, और दादी आई तो फिर बाबा ने दादी को बोला आप मम्मा के साथ दिल्ली जाओ। तो दादी ने थोड़ा सा ही शिकल बनाया, जैसे थोड़ा मुंह चेंज हुआ, हाँ, तो बाबा ने क्या बोला, अरे देखो ये बकरी आई है, देखो, अरे शेरनी होकर के मम्मा के साथ जाओ दिल्ली। तुरंत बुद्धि बन करके अपने आप को ठीक करके बैग पैक करके मम्मा के साथ ट्रेन में चली, और जैसे वहां पहुंचे ट्रेन से उतरे अगले दिन में मम्मा ने उसको बोला अच्छा तुम जानकी कानपुर जाओ। जैसे मम्मा बाबा ने एडवांस में प्लान तो बना लिया होगा, तो ऐसे तुरंत कैसे तुरंत डायरेक्शन को फॉलो करना, हाजी करना, वो दादी ने मम्मा से सीखा। क्योंकि हम जब सेवा शुरू करते हैं थोड़ा बहुत मैं मेरा तो आ जाता है ना, मैंने ये सेवा शुरू करी, अरे मैं इसकी संभाल तो करूं, हाँ बाबा मुझे थोड़ा टाइम दो, अरे अचानक के टाइम आएगा घर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे मैंने नया सेंटर खोला मैं उसके संभाल करना है, टाइम नहीं है तो घर घर जाने का भी दरवाजा बंद हो जाएगा। तो ये जो तुरंत भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, तुरंत दान महान पुण्य, ये इनमें बहुत बड़ी खूबी थी। एक सेकंड में मैं मेरे की बात ही नहीं है, बाबा बैठा है, मम्मा की ये भी थी कि कराने वाला करा रहा है, हुकुम ही हुकुम चला रहा है, तो मैं क्यों बीच में अपना विचार चलाऊं। भल बाबा को कुछ कराना था, कुछ सेंटर खोलवाना था, उसके बाद इसकी संभाल दूसरी डायरेक्शन में दूसरी जगह में भेजेगा तो बाबा संभाल करेंगे ना, आपका क्या जाता है इसमें। बहुत जबरदस्त दादियों ने, मम्मा ने अपने आप को इस बात को माना, पट्टे पे चले हैं, श्रीमत के पट्टे पे चले हैं। ये बहुत मैं कहती हूं मेरे लिए एक प्रेरणा देने वाली बात थी, क्योंकि मुझे पता है पहली पहली जो जब किताब छपी हुई थी लंदन में, एक बहुत सुंदर इंग्लिश में किताब छपी हुई थी, छोटी वाली गिफ्ट किताब बनी थी, गोल्ड कलर की थी, जिसमें मम्मा की काफी कहानियां थी। तो हम एक वीकेंड को बाबा भवन गए थे और वही मम्मा का वीकेंड था, तो दादी जी ने हम सभी को गिफ्ट दिया था, इंग्लिश में छपी हुई थी, तो मैंने रात को पढ़ लिया था और एक स्टोरी मुझे बहुत ही याद आई थी, वो चार पाई की कहानी। उसमें क्या था सार मैं बताती हूं कि मम्मा बाबा एक कमरे में गए थे, मैंने कुछ ठीक ठाक सामान करना था, तो बाबा ने एक बहन को बोला ये जो चारपाई है वो इसके नीचे आप डाल दो, वो दूसरे चारपाई के नीचे डाल दो। तो बहन ने बोला बाबा ये नहीं हो सकेगा, दोबारा बाबा ने रिपीट किया डायरेक्शन कि वो इसको इसके नीचे डाल दो। फिर वो बहन शुरू करने, बाबा उसने बोल माना शुरू किया कि बाबा ये नहीं हो, तो मम्मा ने इशारा दिया तो वो बहन ने किया और वो चारपाई आ गई, ठीक है, उसी समय कुछ बोला नहीं। बाद में फिर मम्मा ने उस बहन के साथ बैठी के देखो तुम्हारे में विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन आप अपनी बुद्धि ऐसे चलाएंगे और जैसे आपने बाबा के सामने चलाए तो आगे चल करके बुद्धि का अहंकार बनने का ज्यादा चांसेस है। कितना प्यार से समझानी देते हैं, क्योंकि उसी समय अहंकार या अभिमान कैसे हमारी बुद्धि को चलाता है हमको ही खुद महसूस नहीं होता है। जल्दी बस जल्दीबाजी, फटाफट बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया, जो सोचा है बोल दिया, ये क्या कंट्रोलिंग पावर है क्या? ये क्या मास्टर की निशानी है क्या? इसमें ही हमारा नंबर पद कम होता है, क्योंकि हमारी शक्ति इसमें ही खर्च हो जाती है। मम्मा की जबरदस्त कैचिंग पावर थी। नहीं, कैचिंग पावर ही पुरुषार्थ का आधार है। और किस बात की कैचिंग पावर? हमारी वो आदि अनादि संस्कार की कैचिंग होनी चाहिए। मुझे याद है बहुत समय से दादी, हम जब भी मैं मधुबन से छुट्टी लेके जा रही थी तो दादी हमको, मुझे खासी स्लोगन दिया कि आप अपनी संपूर्ण अवस्था को एक बेस्ट फ्रेंड बना दो। कितनी अच्छी बात है। आप बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या करेंगे? आप उसके साथ बैठेंगे, वार्तालाप करेंगे, ध्यान देंगे, हाँ, एक दोनों की विशेषता की लेन देन होंगी, कॉपी करेंगे, राइट? कितनी अच्छी बात है। तो जब भी हम बाबा के सामने बैठते हैं तो हमारे अंदर वो जो भावना प्रकट होती है उसमें हमारे आदि अनादि संस्कार भरे हुए होते हैं, और वो भावना में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब वो भावना में कमी आती है ना, तभी हमारी उमंग उत्साह कम होती है। चलो कुछ भी हो जाए सारे दिन में, जो भी कारोबार है, जो भी है, लेकिन ऐसे हम अपने मन स्थिति को संभालना है कि हमारी भावना की फीलिंग कम ना हो जाए, वो डल ना हो जाए। देखते थे हम सारे दिन में, ऐसे नहीं था कि दादी के सामने कम बात नहीं आती थी, बहुत सारी बात। ऐसे लोग आते थे, मार सिर खपाने वाली बात करते थे, लेकिन इनों में इतनी शांति की शक्ति जमा की हुई थी, संतुष्टता की शक्ति जमा की हुई थी कि सामने वाली व्यक्ति को संतुष्ट करा सकते थे बिना शब्द से। तो अभी हमारा काम क्या है? हमारा जमा का स्टॉक, खाता इतना बढ़ाना है कि वो आप पे ही वो एनर्जी लोगों को ऑटोमेटिक मिले। तो आपको फिर बिना शब्द से, बिना मेहनत से आपके संबंध, संपर्क, सब कुछ ऑर्डर में रह जाएगा। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसके पीछे, किसी के पार्ट में इंटरफियर भी नहीं करना पड़ेगा। ये है रियलिटी, ये है ट्रुथ। सत्य बनना है ट्रुथ, ये है प्यूरिटी। तो ये सारा मुझे आज जो गंभीरता की जो बार बार शब्द आ रहा था, मुझे ये बहुत अंदर से फीलिंग आई। और गंभीरता तो हम इंग्लिश में कहेंगे मच्योरिटी, ठीक है, लेकिन कभी कभी गंभीर लोग बनते सीरियस बन जाते हैं। एक एक प्रकार की रमणीकता भी होती है उसके साथ। मुझे याद है दादी हमको बार बार कहती थी, मैं दादी नहीं हूं, मैं एग्जाम्पल हूं, सपोर्ट हूं और आपकी फ्रेंड हूं। हमको इतना अच्छा लगता था। और दादी कभी भी हमको ऐसे छोटेपन की दृष्टि से नहीं देखती थी, हमको इतना रिस्पेक्ट, बहन लेकर के, समान की दृष्टि लेकर के चलाती थी हमको। बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। तो एक बार मुझे याद है दादी कहानी सुनाती थी ये फ्रेंडशिप की। तो मनोहर दादी तो और दादी के साथ अच्छी एक फ्रेंडशिप होती थी, कंपटीशन, एक रूहानी रीस होती थी इन दोनों के बीच में। तो मनोहर दादी की ऐसे माना एक अच्छी एक रमणीक पर्सनालिटी थी, तो वो मम्मा के साथ बहुत रमणीक से व्यवहार करती थी और दादी जानकी थोड़ा रिजर्व रहती थी, ठीक है। तो एक बारी मनोहर दादी ने दादी को पूछा, दादी आप क्यों इतना मम्मा के साथ रिजर्व रहती हो? और दादी को इतना अच्छा नहीं, क्योंकि मम्मा के लिए बहुत रिगार्ड था दादी का, तो ऐसे वैसे व्यवहार नहीं करना है। तो मनोहर दादी ने मम्मा को बोल दिया था कि जानकी संकोच कर रही है, आपके सामने डर आने का डर रही है। तो मम्मा ने दादी का हाथ पकड़ के, वो टेनिस कोर्ट है ना, ये टेनिस कोर्ट था, पैदल करने लगा। तुम प्यार से दादी को पूछा, क्या तुम मेरे से डरती हो क्या? तो दादी ने बोला, नहीं मम्मा आपसे डरती नहीं हूं, लेकिन शायद संकोच करती हूँ कई बात का, तो वो अंदर से जो दिल में कुछ भी वो रिजर्वेशन होता है, संकोच, तो दादी ने बोला उस दिन के बाद मम्मा इतनी फ्रेंडली हो गई थी दादी के साथ, और जैसे दादी को इतना रिस्पेक्ट दे करके, बड़े समझ करके दादी के साथ व्यवहार करती थी, तो दादी इसके बाद इतना जैसे इजीनेस हो गया था संबंध में, फेमिलियरिटी नहीं लेकिन इजीनेस और रिस्पेक्ट से, और विचारों का, जैसे समान वाले होते हैं ना, विचारों का लेन देन होता है और उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, इतना अच्छा वो व्यवहार हो गया। तब से लेकर के दादी को ये महसूस आया कि हमारे पुरुषार्थ में जब भी हम एक दोनों के साथ व्यवहार करते हैं तो फ्रेंडलीनेस का सहयोग चाहिए। देखो कुछ भी है, हम तो आपकी बहन है, फ्रेंड है, बाबा आपको चुन करके लाया, बाबा आपने आपको कोई भी सेवा का निमित्त बनाया है, हमको हमारा पार्ट है, आपको आपका पार्ट है, ठीक है, तो हम आपस में भाई भाई की दृष्टि फ्रेंड होकर के रह सकते हैं ना, क्यों नहीं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं कहती हूं दादी जानकी विदेश में क्यों सभी का दिल ले लिया है, क्योंकि उन्होंने फ्रेंडशिप बनाई है हर एक के साथ, जो भी बड़े थे, बड़ा वीआईपी था, छोटे में घर में था, किचन में, सभी को फ्रेंड बना करके रखा था, और विदेशों में तो ये बात बहुत बड़ी होती है, फ्रेंडशिप की बात। तो ये सारी बातें गंभीरता में आती है, हम सोचते हैं गंभीरता रिजर्व रहो, नहीं, थोड़ी आर्टिफिशियल सीरियसनेस होती है, लेकिन गंभीरता में सत्यता है, प्यूरिटी है, रियलिटी है, रमणीकता है, फ्रेंडशिप की भावना भी होती है, बहुत सारी बातें आती है उसमें। और लास्ट में जो मैंने जहां तक देखा है, ऑब्जर्व किया है, कि दादी जानकी में ये बात बहुत अंडरलाइन थी, मेरी अंत गति कैसे होंगी, और ये दादी ने मम्मा से प्रेरणा ली थी। दादी ने एक बारी मम्मा को पूछा था, मम्मा मैं पुरुषार्थ में कौन सा ध्यान रखूं, तो मम्मा ने डायरेक्ट जवाब दिया था कि सदा अपनी अंतिम घड़ी आपके सामने रखो, ताकि अंतिम घड़िया में मुझे केवल एक बाप की याद ही रहे और कुछ नहीं। ये जैसे जो भी पुरुषार्थ था, दादी जानकी का ध्यान इसमें इतना रहता था कि मैं समझती हूं इस पुरुषार्थ के आधार से ही दादी में समाने की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, कई बातों को मर्ज करके, खत्म करके आगे बढ़ती थी, बिंदु स्वरूप बंद करके आगे बढ़ जाती थी। क्योंकि देखो आप जो भी अभी करेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पर भोगना पड़ेगा ना, उस वेस्टेज का तो भोगना पड़ेगा आपको, चाहे कल या चाहे अंतिम समय में भोगना ही पड़ेगा। आपने आज फालतू विचारों का खर्च किया है, ठीक है, फालतू विचारों का विस्तार में गए हैं आप, तो उसका भी आपको कई एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा। जो बात आपने सप्रेस की उसका भी भोगना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए ये जब हम ये पुरुषार्थ में ध्यान रखते कि मेरी अंतिम घड़ी कैसे होंगी, तो अभी के समय अनुसार जो फालतू चीजें आप वो टच ही नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि एक ध्यान रहता है कि मैं इसको टच करूंगी तो मेरी अंतिम घड़ी कैसे होंगी, ये मुझे कहां से लेके जाएगा, मुझे फिर अंतिम में उसका ही भोगना पड़ेगा। देखो ये भ्रुकुटी के बीच में एक सिंहासन होता है, ठीक है, हम जब पर चिंतन पर दर्शन में चले जाते हैं ना, तो हम आत्मा इस सिंहासन से गिर जाती है और दूसरा कोई बंदा इस सिंहासन पे बैठ जाता है। आपने जो भी व्यक्ति के बारे में सोच किया, वो सोच माना आपने उस व्यक्ति को आपके सिंहासन पे बिठा दिया और आपने इसको परमिशन दिया कि आप मुझे कंट्रोल कर सकते हो, राइट है ना बात? पर चिंतन आपको उस समय दिखाई नहीं देता है कि मेरे पर चिंतन से मैं अपने सिंहासन से गिर गई हूं और मैं दूसरी और को बिठा रही हूं जिसका पर चिंतन हो रहा है, वो ही मेरे सिंहासन पर बैठा है। फिर सारा टाइम मेरा कॉन्शियसनेस उसके बारे में ही घूमता रहता है, उसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। माना अपना स्वराज्य खत्म। इसीलिए यहां पे किसी को भी रेंट फ्री बिठाना नहीं है, ये हमारा तख्त है, ये सिंहासन मुझ आत्मा का है। और किसको बिठाना है? बाबा को बिठाओ। कुछ पता नहीं, पहले बाबा के पास जाओ। एक सेकंड की बात है, हमको तो बार बार अंदर से फीलिंग आती है जब हम बाबा के पास बैठते हैं ना, कमरे में कुछ ऐसी बात होती है जो हमको समझ में नहीं आती है या इसका एक सलूशन नहीं निकलता है, तो हम दिल से बाबा को यहां सिंहासन पे बिठाते हैं और बाबा से वार्तालाप, बाबा इसका क्या है, फिर शांत हो जाते, बुद्धि को बिल्कुल शांत कर देते। फिर उस समय जैसे एक फीलिंग आती है, क्लैरिटी पैदा होती है क्या करना। तो इतना एक नेचुरल जैसे गाइडेंस मिलता है बाबा से, क्योंकि ये ध्यान सदा रहे कि हमको हमारे ब्राह्मण जीवन में तीन बातें करनी है बस। एक है बाप को याद करना है, हमारी कमाई जमा करनी है। दूसरा है स्वदर्शन चक्रधारी बन करके नेगेटिविटी को नाश करना है, विकार को नाश करना है, वॉइसलेस बनना है। और तीसरी बात है किसी को आप समान बनाना है, आपके जीवन में देखो आपसे कोई आगे जाता है तो ईर्ष्या पैदा होती है क्या, या अंदर से खुशी पैदा होती है, मेरे भाई बहन आगे जा रहे हैं, मैं इनसे कुछ सीखूं। ईर्ष्या माना अंदर कुछ खाली है, प्राप्ति नहीं है, इसलिए किसी और की कमाई देख करके ईर्ष्या हो रही है। लेकिन ऐसा हमको बनाना है जो हम एक दो को देख करके, एक दो का पुरुषार्थ देख करके एक दो को आगे बढ़ाए, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। इसलिए किसी की भी गलती, मम्मा कहती थी ना, एक बारी मिस्टेक करने की परमिशन है, लेकिन दोबारा मिस्टेक का सोच करना, ये दूसरा मिस्टेक नहीं करो आप। मिस्टेक किया, फिर दूसरा मिस्टेक क्या होता है, वो मिस्टेक का चिंतन चलता है। मिस्टेक करके महसूस करके बात खत्म। तो ऐसी मीठी मम्मा को आह्वान करो। मैं समझती हूं कल अमृत वेले के समय मम्मा आप ही मधुबन में पहुंच जाएंगी। हाँ, इतनी प्यार भरी भावनाएं हैं, हम क्लासेस सुन रहे हैं सभी, इतना अच्छी अच्छी स्टोरीज कहानी सुन रहे, इतना प्यार है ऐसी मीठी मम्मा की जिन्होंने हमारे नियम बनाए हैं, इतनी मर्यादाओं के आधार से हमको एग्जाम्पल बना करके रही है। तो ऐसी प्रेरणा लेकर के हम भी कल के दिन के लिए अमृत वेले के समय जो भी धारणा पक्की करनी है, दृढ़ संकल्प लेकर के अमृत वेले के समय बैठो, ठीक है? ओम शांति।